ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। भगवद गीता पंचम अध्याय श्लोक 29। भोक्तारं यज्ञ तपसाम सर्वलोकमहेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं ऋच्छति। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं ऋच्छति। अनुवाद। भगवान कृष्ण की वाणी। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जनकर मेरे भावनामृत में पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तात्पर्य। माया के वशीभूत सारे बद्ध जीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु भगवद गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्र को वे नहीं जानते। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता है। मनुष्यों को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्या सेवा में अर्पित कर दे, क्योंकि वे ही समस्त लोगों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी है। उनसे बड़ा कोई नहीं है। वे बड़े से बड़े देवता शिव तथा ब्रह्मा से भी महान है। वेदों में श्वेताश्वतर उपनिषद भगवान का तमीश्वराणं परमं महेश्वरं कहा गया है। माया के वशीभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व ये शब्द क्या है? जताना उसका मतलब क्या है? उसका प्रभुत्व जताना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सर्वत्र भगवान की माया का प्रभुत्व है। भगवान प्रकृति माया के स्वामी है और बद्ध जीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत है। जब तक कोई इन तथ्यों को समझ नहीं लेता तब तक संसार में व्यष्टि या समष्टि रूप से शांति प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। कृष्ण भावनामृत का यही अर्थ है। भगवान कृष्ण परमेश्वर है तथा देवताओं सहित सारे जीव उनके आश्रित है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर ही पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है। या पांचवा अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिससे सामान्यतः कर्मयोग कहते हैं, व्यवहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्मयोग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है परमेश्वर के रूप में भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है और ज्ञान योग व पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आते हैं और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहते हैं, उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है। किंतु कृष्ण भावनामृत उससे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होते हैं। जो मनुष्य जितना ही प्रगत है वह उतना ही पदार्थ के बंधन से मुक्त रहते हैं। भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते। या तो कृष्ण भावनामृत के लिए व्यक्तिगत व्यवहारिक कर्तव्य पालन पर निर्भर करता है, जिससे मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके इच्छा तथा क्रोध के प्रभाव को जीत लेता है। और जो कोई उपयुक्त कामेच्छाओं को वश से करके कृष्ण भावनामृत में दृढ़ रहते हैं वह ब्राह्म निर्वाण या दिव्य अवस्था को प्राप्त होते हैं। कृष्ण भावनामृत में अष्टांग योग पद्धति का स्वयमेव अभ्यास होते हैं, क्योंकि इससे अंतिम लक्ष्य की पूर्ति होती है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान तथा समाधि के अभ्यास द्वारा धीरे धीरे प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति योग में तो ये प्रस्तावना के स्वरूप है, क्योंकि केवल इसी से मनुष्य को पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है, यह जीवन की परम सिद्धि है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय कर्मयोग कृष्ण भावना भक्ति कर्म का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। भुक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानम ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्यों का परम भुक्त, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जनकर मेरे भवनामृत में पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयतः परकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहगजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही शांति सूत्र है, बहुत सरल है। सारांश है कि श्री कृष्ण परमेश्वर भगवान है। तो कैसे कृष्ण भगवान है? वे भुक्तारम यज्ञ तपसा, अर्थात वो सब धार्मिक कार्यकलापों जो लोग करते हैं, भुक्ता है भगवान। वो भगवान कौन है? कृष्ण। वैदिक संस्कृति में यज्ञ करना और तपस्या करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आजकल पूर्व काल जैसे विशाल यज्ञ बनाना संभव नहीं है, और यदि कुछ लोग आयोजन करते हैं तो अच्छी तरह सब विधि के अनुसार पूर्व काल जैसे करना तो संभव नहीं है। इस कल युग में यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ। कृष्ण वर्णं त्विषा कृष्णं संगोपांगाश्च पार्षदं यज्ञाय संकीर्तन प्रायर्यजन्ति हि सुमेधसः। इस कल युग में युग धर्म है हरि नाम संकीर्तन, और यज्ञ पुरुष है श्री कृष्ण। इस कल युग में श्री कृष्ण सुवर्ण अवतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं, जिनका कहते हुए जन्मदिन सामने है। वो महोत्सव उद्यापित होगा रविवार को। जैसे जन्माष्टमी होते हैं तो गौर पूर्णिमा भी होती है। उसी दिन वो प्रसिद्ध महोत्सव होते होली महोत्सव। आजकल होली में खाली रंग फेंकना और फटाका फटाना उस प्रकार उद्यापित होते, परंतु ये होली महोत्सव का अर्थ है कि विशेषकर उसी दिन ब्रज धाम में Krishna और व्रज गोपियां वो होली खेला करते हैं और उसी दिन भगवान कृष्ण हिंदोला में झूलन में राधा कृष्ण उनकी लीला होती है वो ही लीला। परंतु हम जो गौड़िया वैष्णव है हम कली युग का यज्ञ पुरुष श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का अविभाव तिथि उद्यापन करते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण है अन्य वे संकीर्तन यज्ञेश्वर है। संकीर्तन प्रवर्तक श्री कृष्ण चैतन्य जार चरण आश्रित से धन्य सर्वज्ञ होते कृष्ण नाम यज्ञ शाह। ये सब चैतन्य चरितामृत में यही सब प्रमाण है कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन प्रवर्तक है। इस कलयुग विशेषकर कलयुग में वो सब पूर्व काल कृत यज्ञों का सारांश है कृष्ण नाम यज्ञ और सभी यज्ञों का भुक्ता है श्री कृष्ण। तो कृष्ण नाम यज्ञ विशेष का हरि कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने के द्वारा साधित होते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इस हरे कृष्ण महामंत्र जाप करना कीर्तन करना यज्ञ ही है। तो भोक्ता है श्री कृष्ण। तो यज्ञ करने में हमें सचेतन होने चाहिए कि ये सब श्री कृष्ण का सुख के लिए है। जैसे हवन में उसे यज्ञ में हम आहुति के साथ बोलते हैं इदम नारायणाय नमः। तो ये अर्पण भगवान नारायण के लिए मेरे लिए नहीं है। तो इस प्रकार कीर्तन में भी कि कीर्तन भगवान कृष्ण का दिव्य आनंद वर्धन करने के लिए है वो भावना से कीर्तन होते हैं। कीर्तन तो हमारा स्वयं के लिए धार्मिक मनोरंजन के लिए नहीं है। कीर्तन करने से हम आनंद मिलते हैं क्योंकि कृष्ण 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 वो ही नाम ही कृष्ण है और कृष्ण भगवान संपूर्ण आनंद का मूर्ति है। कृष्ण नाम और कृष्ण अभिन्न है। तो कृष्ण नाम बोलने से हम आनंद मिलते हैं। परंतु ऐसी भावना होनी चाहिए कि हम कीर्तन करते हैं कृष्ण का आनंद के लिए। हम भी आनंदित होते हैं किंतु वे भोक्ता है वे स्वामी है हम उनके दास है। हमारा आनंद क्या है वो हम आनंदित होते हैं कृष्ण ऐसे देखने से कि कृष्ण प्रसन्न है इनकी प्रसन्नता में हम प्रसन्न होते कि मेरे आनंद मेरा जीवन का उद्देश्य है ऐसे सोचना आसुरिक। और भक्ति भावना क्या है तो मेरा आनंद वो तो कोई बात नहीं है वो सब कुछ जो मैं करता हूँ बोलता हूँ प्रयास सभी प्रयास जो मैं करता हूँ सभी चिंतन भी केवल श्री कृष्ण का आनंद के लिए है। यही भक्ति भावना है और उसी भक्ति भावना से कीर्तन होते हैं। यदि हम खुद का आनंद के लिए करते हैं मनोरंजन के लिए तो हम मानसिक रंजन मिलेंगे परंतु भक्ति तो दूर रहेगी। तो भोक्तारम यज्ञ तपसाम, तपस्या शब्द आजकल केवल कोश में है। तो तपस्या करना पूर्व काल ऋषियों जैसे तपस्या किए, आजकल वो तो संभव नहीं है, संभव तो नहीं है। परंतु भक्ति में थोड़ा सा तपस्या होने चाहिए, क्योंकि भौतिक भोग विलासी होना और भक्ति करना तो साथ साथ संभव नहीं है। और ऐसा भी संभव नहीं है कुछ समय में भक्ति करूंगा और दूसरे समय में भौतिक भोग विलास करूंगा, तो वो तो संभव नहीं है। तो भक्ति में आत्मसमर्पण होने चाहिए। आत्मसमर्पण तो वही है जो सब कुछ जो हम करते हैं, बोलते हैं, सोचते, तो केवल कृष्ण के लिए होने चाहिए, कृष्णार्थे खिल चेष्टा। हमारे सभी चेष्टाओं तो कृष्ण के लिए होने चाहिए, यही भक्ति है। तो इस कलयुग में हम उपयुक्त नहीं है कठोर तपस्या करने के लिए। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय में हम कम से कम भक्तों को ये आदेश देते हैं कि पाप से दूर रहो, पाप कर्म मत करो, अर्थात मांस भक्षण मत करो, शराब और सभी प्रकार का नेशा वर्जन करो, व्यभिचार मत करो और जुआ इत्यादि करना, लॉटरी ये सब मत करो। और कुछ तपस्या भी है, एकादशी व्रत पालन करना, सामने गौर पूर्णिमा महोत्सव है, उसी दिन में उपवास करना है। तो इस प्रकार कुछ थोड़ा सा तपस्या होते हैं आत्मशुद्धि के लिए, और जिससे हमारे जीवन में वो आत्मशुद्धि होगी, जिससे हम पाप नहीं करेंगे, क्योंकि पाप कर्म और भक्ति तो साथ साथ नहीं हो सकते। तो क्या है पाप, क्या है भक्ति, दोनों में क्या अंतर है जिससे हम पाप तो नहीं करेंगे। इसलिए इस कृष्ण भावनामृत संघ में हम शिक्षण देते हैं जिससे वास्तव भक्ति हो सकती। तो भगवान तो भगवान है। सामान्यतः लोग सोचते हैं तो भगवान तो ATM जैसे है, हम और जैसे ATM में कुछ नंबर डालना है और बटन दबने है और पैसा मिलते। तो इस प्रकार भगवान का मंदिर जाकर तो कुछ मंत्र बोलना है और 100 रुपया पेटी में डालना है और हमारे आशा है कि तो 100 रुपया का जमा किया था उससे 1 लाख रुपया मिल जाऊंगा। तो भगवान बड़ा ATM है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। तो विपरीत ही है कि हम भगवान के सेवक है और हम हमारे सब कुछ जो हम वास्तव में हमारे कुछ कुछ भी चीज नहीं है, सब भगवान की संपत्ति है। तो वो बात स्वीकार करना भक्ति ही है। हे भगवान, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं आपकी सेवा में सब कुछ नियुक्त करता हूँ, वास्तव में मेरे कुछ नहीं है, इसलिए सब जो मैं माया से सोचता हूँ ये सब मेरे है, तो आपकी सेवा में लगाता हूँ। तो वो भक्ति भावना है, मेरे घर, मेरे कुटुंबों,
वो सब कुछ जो मैं सोचते मेरा हूँ वो सब श्री कृष्ण की सेवा में अर्पण करने चाहिए। ये शरीर भी भगवान दे दिया है, वो पूरा शरीर इनकी सेवा में नियुक्त करना चाहिए। तो यही भक्ति है। भगवान का मतलब नियंत्र, स्वामी, प्रभु, माया का प्रभाव से हम ऐसे सोचते कि ईश्वर हो हम अहम भोगी, मैं ईश्वर हूं और सब कुछ जो जगत में है मेरे भोगने के लिए है। ये भूल धारणा माया बंधन का मूल कारण है। तो हमें समझना चाहिए कि भगवान हमारे प्रभु है और इनकी सेवा करना हमारा एक ही कर्तव्य है। तो भुक्तारम यज्ञ यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। अभी भारत राष्ट्र का चुनाव सामने होगा, कौन नया प्रधानमंत्री होंगे, क्या राहुल होंगे, नरेंद्र मोदी होंगे, अरविंद केजरीवाल, सोनिया गांधी, कौन होंगे? तो चुनाव के पहले, चुनाव के बाद केवल भारत के मालिक नहीं है, केवल दुनिया के मालिक नहीं है, केवल इस ब्रह्मांड के मालिक नहीं है, तो समस्त ब्रह्मांडों के एकमात्र मालिक है श्री कृष्ण। चुनाव करने का जरूरत नहीं है। और सब छोटे छोटे लोग सोचते तो मैं प्रधानमंत्री हूं, तो ये बात सोचिए, आज का राजा काल का कुत्ता होंगे। तो वास्तव राजा है श्री कृष्ण। तो हम ऐसे राजा चाहते युधिष्ठिर जैसे, जो मानते हैं मैं केवल भगवान का सेवक हूं, इनके प्रतिनिधि हूं, ऐसे राजा हम चाहिए। और श्री कृष्ण के आदेशों पालन करके राज शासन करते। तो युधिष्ठिर कहा है, राम राजा हम चाहिए, राम राजा। वो संभव होगा, आशा है यदि हम कृष्ण भक्ति प्रचार करेंगे तो आशा है वो दिन आएगा जिसमें लोग समझ लेंगे कि आज की तथा कथित सभ्यता से लोग तो कुछ भी सुख शांति कुछ भी नहीं मिलती है। तो हम राम राज्य चाहिए। राम राज्य का मतलब आज भी राम राज्य हो सकते हैं यदि हम राम के नियमों पालन करेंगे। कोसाई खाना बनाकर राम राजा के लिए याचना करना तो नहीं चलेगा। तो धर्म पालन करना पड़ेगा। तो राम और कृष्ण का आशीर्वाद हम चाहते हैं, परंतु पहले हम भगवान के सब नियम पालन करना पड़ेगा। जैसे राष्ट्र में यदि हम सरकार के सब आइन पालन करेंगे तो हम मंत्रियों से कुछ याचना कर सकते, लेकिन यदि हम अपराधी है तो हमारा क्या अधिकार है किसी मंत्री से कुछ मांगना? वास्तव ये उदाहरण बोलता हूँ, लेकिन वास्तव में आजकल तो विपरीत होते है। जो सभी किसी भी आइन पालन नहीं करते है, तो ऐसे लोग मंत्री होते हैं। परंतु ये खाली उदाहरण बोलता हूं। तो पहले हमें सरकार का सब आइन पालन करना पड़ेगा और उसके बाद एक्चुअली तो कुछ मांगने का जरूरत नहीं होगा, तो सरकार हमारे लिए सब व्यवस्था करेंगे। वही आशा है राम राज्य में। आजकल तो सभी सरकार जो भी हो भाजप या पॉलिटिकल बात हम नहीं कहेंगे, लेकिन सभी सरकार जो भी हो तो केवल प्रजाओं का शोषण करते हैं, बहुत बहुत प्रॉमिस करते हैं हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, और बाद में तो सब सभी सरकार का एक ही काम है तो सभी प्रजाओं का शोषण करना। तो परमेश्वर है श्री कृष्ण, और यदि हम कृष्ण का आईन कानून मानन करेंगे मानेंगे तो इस घर काले युग में भी सोना युग होगा। हम मंत्री प्रधानमंत्री ऐसे वो पद हम नहीं चाहते, लेकिन हम ये सब बड़े बड़े नेताओं को सलाह दे सकते हैं तो कैसे राज्य चलाना है जिससे सुख शांति सबके लिए होगी, लेकिन वे तो नहीं चाहते। वे सोचते कि हम भगवान से और बहुत अच्छा सब कुछ जानते हैं, हम साइंस से मानव समाज की प्रगति बनेंगे। तो आजकल वैज्ञानिक युग है, और वैज्ञानिक युग में हम सेलफोन से हम यहाँ वडोदरा में बैठ के हमारे कुटुंबों जो अमेरिका में रहते हैं हम बात कर सकते, तो ऐसे कुछ सुविधा हो। तो ये सब सुविधा होती है, परंतु किसी के हृदय में कुछ भी शांति नहीं है, तो क्या फायदा हो गया ये सब से, ये सब से शांति नहीं होती है, क्योंकि ये सब तथाकथित वैज्ञानिक प्रगति से हम सब विमोहित हो गया है, और जीवन का वास्तव उद्देश्य क्या है उसको भूल किया है। जीवन का वास्तव उद्देश्य है यही समझना कि कृष्णा ही परमेश्वर भगवान है, और इस सुदुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके हमें कृष्ण भक्ति करनी चाहिए जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा, जिससे हम भगवान के पास जाएंगे। लेकिन आज का वो बात तो कोई नहीं सोचते, सब शॉपिंग मॉल जाते हैं, गंदी बात बोलते, गंदी चीजों खाते हैं, गंदी हवा का श्वास लेते हैं, और सबका मन में सिर्फ गंदगी है। तो शुद्ध चित्त में ही कृष्ण भक्ति होती है, और आजकल कैसे भक्ति होगी, और सब शिक्षा भी सब बच्चे स्कूल जाते हैं और वहां पर सीखते तो कैसे खुद को सक्सेसफुल बनाना, सक्सेसफुल का मतलब बड़ा पैसा वाला होना, परंतु हम देखते हैं कि बड़े पैसे वाले वे भी अशांत है। तो अगर आपके पास करोड़ों रुपया है परंतु शांति नहीं है, आपका क्या लाभ हो गया, कुछ नहीं। और जो संतुष्ट है दरिद्रता के बीच में भी, संतुष्ट है कृष्ण भक्ति में, उसकी स्थिति बहुत अच्छी है, बड़ा बड़ा क्रोधपति से जिनके हृदय में शांति नहीं है। तो कैसे शांति प्राप्त होती है तो समझना चाहिए, श्री कृष्ण भुक्ता है, वे मालिक है, और सुहृदम सर्वभूतानम, सर्व प्राणियों के परम हितैषी है श्री कृष्ण। तो भगवान कृष्ण मेरा बंधु है, तो मुझे चिंता करने का क्या जरूरत है? भगवान कृष्ण मुझको ख्याल रखते हैं। तो यदि हमारे वैसे विश्वास, तो हम सभी स्थितियों में भी सुखी रहेंगे। सामान्यतः हम शुभ लाभ चाहते हैं, परंतु प्रकृति, भौतिक प्रकृति का कारण से हम कभी कभी दुख मिलते, कभी कभी सुख मिलते। तो दुख में भी यदि हम विश्वास करते हैं कि ये श्री कृष्ण मेरा शरण है, श्री कृष्ण इस दुखमय अवस्था मुझको दिए थे जिससे मैं समझ सकता हूँ कि इस भौतिक जगत दुखमय है, इनकी शरण लेना चाहिए। भक्तों तो दरिद्रता में, बीमा में और सभी प्रकार के कष्टों में सोचते कि श्री कृष्ण मुझको यही दुख देते हैं क्योंकि मैं पूर्व काल बहुत पाप किया था और इस प्रकार मुझको शिक्षा देने के लिए कि पाप करना ठीक नहीं है, कि इस भौतिक जगत दुखमय है। भगवान श्री कृष्ण इनकी दया से मुझको इस दंड देते हैं जिससे मैं तुरंत साक्षात्कार मिलूंगा कि इस भौतिक जगत में कुछ नहीं है, केवल इनके चरण में भक्ति, वो ही जीवन का श्रेय होते हैं। तो ये भक्ति भावना है कि श्री कृष्ण मेरा परम बंधु है। तो यदि हम मानते हैं कि श्री कृष्ण हमारे परम बंधु है, तो हम जरूर कुछ भी नहीं करेंगे जो हमारा बंधु नहीं चाहते। इसलिए हम मांस भक्षण, शराब पीने इत्यादि नहीं करेंगे, क्योंकि उससे भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न नहीं होते। तो श्री कृष्ण सुहृदम सर्वभूतानम, तो केवल मेरे मित्र नहीं है, तो सब जीवों के मित्र हैं। इसलिए मुझे सभी जीवों से सद्व्यवहार करना चाहिए। मैं किसी का शोषण करने का प्रयास नहीं करूँगा। तो सभी प्राणियों से मैं सद्व्यवहार करता हूँ, क्योंकि सब कृष्ण के जीव है। ममाय वंशो जीवलोके जीव भूत सनातन, सब जीव कृष्ण के अंश है। इसलिए सभी जीवों को सम्मान देना चाहिए और सभी जीवों से सद व्यवहार करना चाहिए। तो जो व्यक्ति भक्ति भावना से मानते हैं कि श्री कृष्ण परम भोक्ता है, परम स्वामी और नियंत्र है, परम मित्र है, तो वो व्यक्ति इस दुखमय संसार में रहते है, परंतु पद्म पात्र में वाम भाषा, वो पद्म पात्र कमल का पात्र के ऊपर अगर एक बूंद जल गिरेगा तो तुरंत एक सेकंड में गिल जाएगा, वहां नहीं रहेगा। तो इस प्रकार भक्तों इस अशांतिमय भौतिक स्थिति में रहते हैं, परंतु वे शांत रहते, क्योंकि वे श्री कृष्ण की शरण में है। तो ये शांति सूत्र है। हरे कृष्ण। अगर किसी का प्रश्न हो तो जरूर से पूछे अभी। सब शांत है, ऑलरेडी शांत है, ठीक है। हरे कृष्ण।